उनकी शक्ति के बारे में और कुंडली का शक्ति
कुंडली शक्ति आज तक किसी की कुंडली शक्ति जली है देखा किसी को देखा
नहीं
तो जिसको अनुभव नहीं किया आज तक सिर्फ नाम सुना है ये पंडिताई है विद्वता झाड़ी है कोई कुंडलिनी शक्ति नहीं होती है जो रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई हुई हो रीढ़ के हड्डी के नीचे वो स्थान है जहाँ काम इंद्रियां होती है जो काम इंद्रियां अज्ञानता होने के कारण छंद होती रहती है छीन होती रहती है शक्ति का पतन होता रहता है इसी को उन्होंने कह दिया है कुंडलिनी शक्ति सोई हुई हुई है बाकी कोई कुंडलिनी शक्ति नहीं तो रजवीर की शक्ति है जो ईश्वर के ज्ञान के द्वारा ही जागृत हो सकती है और ऐसी जागृत हो सकती है जैसा गायन इस सृष्टि के जगत पिता का गायन गाया हुआ है जिसको कहते हैं जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो जली हुई कुंडलिनी शक्ति की यादगार शिव के मंदिरों में देखी जाती है कि शिव के मंदिर में पुरुष की कामेंद्रिय रखी हुई है और स्त्री का स्वरूप रखा हुआ है जिन इंद्रियों में स्त्री पुरुष की इंद्रियों में राजा और वीर की शक्ति समाई हुई है उस शक्ति को जिसने साधा है साधना करके और अव्वल नंबर में साधा है उनकी यादगार है शिव शंकर भोले नाथ शिव को तो अपनी इंद्रियां है ही नहीं वो शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्र रूप से वो पुरुषार्थ में इतना तीखा जाता है इंद्रिय में शरण होना ही बंद हो जाता इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य गाया हुआ है बाकी भगवान के विश्वविद्यालय में सबको एक जैसे स्टूडेंट नहीं हो सकते नंबर आदमी होंगे या एक जैसे होंगे तो जो अव्वल नंबर है उसकी यादगार लिंग दिखाया गया सबसे पुराना मंदिर भारत का यादगार जो मंदिर है वो सोमनाथ मंदिर हिस्ट्री में प्रसिद्ध है। उस सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर का लिंग बीच में लटक रहा था और उसमें हीरा गड़ा हुआ था बीच में। वो पत्थर का लिंग शरीर की यादगार है, उस शरीर की यादगार है जिसमें शिव प्रवेश करता है। निराकार शिव साकार में प्रवेश करके अपना कार्य कराता है। क्या कार्य कराता है? राजयोग सिखा करे, इंद्रियों पर जीत पहनाता है। इंद्रियों में सबसे जास्ती क्षरित होने वाली इंद्रिय है काम विकार की इंद्रिय। उसे सुख भी बहुत भोगते हैं, छर्म भी सबसे जास्ती होती है। उस छर्म को रोकने का तरीका राजयोग है। राजयोग के सिवाय दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। तो शिव के मंदिरों में लिंग है, शंकर के शरीर की यादगार, और वो शरीरधारी निराकार भगवान की ऐसी याद में बैठा हुआ है तो उसको अपनी इंद्रियों की सुधबुद्धि ही नहीं, शरीर का भान ही भूल जाता है। प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाया गया है कि इंद्रिय जीत कैसे बना, वो इंद्रिय पूजी जाती है। पूजा पवित्र की होगी या पवित्र की होगी, पवित्र की ही पूजा होती है। तो लिंग 100% पवित्र बनता है। ऐसा पवित्र बनता है कि यादगार दिखाई गई है, 24 घंटे भी उसी स्थिति में रहे तो भी उस इंद्रिय का क्षरण नहीं होता। ये ज्ञान द्वापर युग के द्वैतवाद युग से आने वाले धर्म पिताएं नहीं दे सकते। क्योंकि उन मुसलमानों ने तो शिव के मंदिरों को तोड़ा है। देवी देवता सनातन धर्म के जो द्वापर युग में हिंदू कहे जाने वाले धर्म संप्रदाय के लोग हुए हैं उनकी आस्था को तोड़ा है, इसलिए उनको ये दंड मिलता है। कि वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि कर्मेंद्रियों की सिवाय ज्ञानेंद्रियों से भी सुख भोगा जा सकता है। ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगते हैं देवताएं, सिर्फ सुख ही नहीं भोगते, संतान भी पैदा करते हैं। शेष इंद्रियों से सुख भोग करके संतान पैदा होती है। ये बात को भारतवासी भी भूल गए, भगवान आकर के बताते हैं। तो भगवान आकर के चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो, चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, उन पर पूरा कंट्रोल करना सिखाता है राजयोग के द्वारा। ये गीता का ही ज्ञान है, जिसे कहते हैं गीता माता। स्त्री और पुरुष दो है, पुरुष संपूर्ण ज्ञानी बने और स्त्री ज्ञानी न बने। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण न करे और दोनों का संयोग हो तो इंद्रियों पर जीत पाए सकेंगे नहीं। और पुरुष जाति तो पा ही नहीं सकती, इसलिए बाबा ने ब्रह्मा के वाक्यों में बोला हुआ है, इस दुनिया के सब पुरुष दुर्योधन दुशासन काम विकार के आवेग में आते हैं तो ये भूल जाता है कि हम दुख दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उनको कहा जाता है बलात्कारी, बलपूर्वक ही काम करने वाले, दुष्ट शासन करने वाले, दुर्योधन दुष्ट युद्ध करने वाले इंद्रियों का। नहीं तो भगवान तो हमको सिखाते हैं सुख लेना है सुख देना है। नैसर्गिक रूप में इंद्रियां जो बनी है सुख लेने और देने के लिए बनी है या दुख देने के लिए बनी है, किस लिए बनी है? है सुख लेने और देने के लिए बनी। दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं। तो कैसे करें कि इंद्रियों से सुख ही मिले दुख न मिले? वो तरीका भगवान बाप आकर के सिखाते हैं, कोई मनुष्य ये राजयोग नहीं सिखा सकता। बोलता पलता होना सिखाएंगे, शीर्षासन लगाओ, ये करो वो करो, सांस रोकना सिखाई देंगे, दैनिक योग सिखाएंगे, आत्मा का परमात्मा से योग नहीं सिखाएंगे। न आत्मा का ज्ञान है किसी के पास, न आत्मा के 84 के चक्र का ज्ञान किसी के पास, क्योंकि मनुष्य मात्र सात जन्म मन के चक्र में आने से पूर्व जन्म की बात भूल जाते हैं। एक भगवान ही है जो जन्म मन के चक्र में नहीं आता, इसलिए त्रिकालदर्शी है, एक एक आत्मा के अनेक जन्मों की कहानी को जानता है। और अरे ओके बता दो, अभी
अटैक
बत्तीस गुणों का चित्र दिखाया गया है निराकार का। ज्योति बिंदु का प्रकाश बल है और उसमें से 32 गुण दिखाए गए हैं। हाँ
बच्चे दोनों के जो बीच में बिंदु है उसके साथ से उनकी दिखाई है। एडवांस पार्टी है अनुकी योजना की किताब में बच्चे दोनों के चित्र के साथ बीच में त्रिमुखी की दिखाई है।
त्रिमुखी दिखाई है। हाँ
तो बाबा ये त्रिमुखी शास्त्र दिखाने के लिए साकार किया है क्योंकि क्या परमात्मा सन्यासी है ऐसी बात की जो चीजें नहीं हो जाती वजह से
नहीं शिव आते हैं तो शिव भगवान तो एक है परंतु वो आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में पुरुष का कार्य वहन करने वाला भी चाहिए और स्त्री का कार्य वहन करने वाली माँ भी चाहिए। तो माँ के रूप में ब्रह्मा को बिठाया हुआ है। माँ का कार्य है ज्ञान के बीज को धारण करना। माँ बीज धारण करती है ना तो बुद्धि रूपी पेट में बीज धारण होता है ब्रह्मा को और ज्ञान का दुग्ध पिलाना बच्चों को। ये बेसिक नॉलेज तक ज्ञान देती है माँ। तो गाया जाता है त्वमेव माता ऐसे नहीं पहले पहले त्वमेव पिता क्या गाते त्वमेव माता तू ही मेरी माता है। मना चोला तो माँ का दिखाया गया है सुंदर सुंदर गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा ब्रह्मा का लेकिन उसमें ज्ञान देने वाला ज्ञान का दूध पिलाने वाला कौन है शिव है एक है इसलिए कहा तू ही मेरी माता है। और फिर जब बेसिक ज्ञान की पूर्ति होती है ब्रह्मा अपना शरीर छोड़ देते हैं तो काम शुरू होता है दूसरी मूर्ति का। जो नौकुरियों के ब्राह्मण हैं उनमें जो अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ने वाले हैं और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं उनका ध्वंस। ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश। तो हम ब्राह्मणों ने सन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया अर्थात जो जगत में मनुष्य शक्ति का पिता है शंकर जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो वो शंकर प्रत्यक्ष हुआ सबको नहीं। बच्चा घर में आता है तो पहले जो नजदीकी है उनको पता चलता है या सारी दुनिया को पता चल जाता है, है? नजदीकी को पता चलता है। तो जो बाप के चार मुख्य बच्चे गाए हुए हैं शास्त्रों में भी गाए हुए हैं ब्रह्मा के चार पुत्र हुए पहले पहले सनक सनातन सनंदन सनक कुमार रामायण में उनको राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नाम दिया है। ये चार धर्मों के चार बीज हैं जो ज्यादा नजदीकी थे बाप को पहचाना। नंबर बार तो जरूर जो बड़ा बच्चा है ज्ञान के आधार पर बड़ा माना गया सनत कुमार, उसने पहले पहले पहचाना होगा या दूसरे पहचानेंगे? क्योंकि शिव बाप के ब्रह्मा द्वारा चार पुत्र, चार धर्मों के चार बीज, दुनिया के चार मुख्य धर्म है, देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इन चार धर्मों के चार बीज सत्य के आदि में प्रत्यक्ष होते हैं। बड़ा भाई बाप समान माना जाता है, उस बड़े भाई को उन्होंने पहचाना भी, परंतु उनमें तीन दूसरे दूसरे धर्मों के बीज हैं। ये वो पूरी रीत नहीं पहचान पाते। पहला जो है सनत कुमार, उसके नाम पर सनातन धर्म की स्थापना हुई, जैसे क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म, धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है, बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, मोहम्मद के द्वारा मुस्लिम धर्म, ऐसे नहीं हिंदू धर्म नाम धर दिया और हिंदू धर्म का पूछा जाता है धर्म पिता कौन, वो धर्म की पुस्तक कौन सी है, तो कोई बताता वेद, कोई बताता है शास्त्र, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, नहीं, भगवान बाप आते हैं ब्रह्मा के बड़े पुत्र सनत कुमार के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। सनत कुमार के नाम पर हमारे धर्म का नाम हुआ है सनातन धर्म। वो सनातन धर्म का मतलब यह है पुराने से पुराना, कितना पुराना, कलयुग को कहेंगे अभी अभी, द्वापर उससे पुराना, त्रेता उससे पुराना, सतयुग उससे पुराना, और इन चतुर्युग से भी पुराना जो है उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसकी यादगार में भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास भी चौथी वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान बाप आकर के सत्य सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, सत्ययुग की स्थापना करते हैं। सत्य बाप है तो सत्य की ही स्थापना करेगा। सच्चे दिल पर साहब राजी, जो सच्चे सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उनके ऊपर राजी होता है, अंदर एक और बाहर से दूसरे, ऐसों पर राजी नहीं होता, वो है ही कन्वर्ट होने वाली आती। अभी बाप आया हुआ है, अपना स्वरूप भी बताता है कि मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु है, जो गीता में गाया हुआ है अणुअण समानुस्मरित्य है, अणु से भी अनुरूप है, ज्योतिर्मय है, ब्रह्मुटी के मध्य में प्रवेश करता है। ये बोला था और वंदे काम आवे के समय प्याण काल में कल्पांश काल में हर मनुष्य आत्मा को पृथ्वी के मध्य में आत्मा को याद करना चाहिए। तो जो 32 गुणों वाला चित्र है वो 32 गुणों वाला चित्र निराकार का सूचक नहीं है, वो लिंग का सूचक है। लिंग माने साकार, और वो साकार लिंग है शंकर। शंकर कोई देव देव महादेव कहा जाता है। देव देव महादेव शिव की तीन मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव। तो समझने की बात है, ब्रह्मा की तो पूजा ही नहीं होती है। पूजा होती है नहीं, क्योंकि तो वो इंद्रियों पर जीत नहीं पाते, शरीर रहते रहते इंद्रियां उनकी पूजनीय नहीं बन पाती, ये ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। शंकर की पूजा होती है, क्योंकि पुरुषार्थ जीवन में जीते जी उन्होंने इंद्रियों के ऊपर जीत पाई। ये वो 32 गुण भी, वैसे तो भगवान के अनेक गुण हैं अनगिनत, लेकिन 32 दिखाए हैं, तो 32 गुण भी साकार में गुण अवगुण होते हैं या निराकार में होते हैं? साकार होगा तो गुणों का अवगुणों का पता चलेगा। साकार शरीर ही नहीं होगा तो गुणों अवगुणों का पता कैसे चलेगा? इसलिए शिव की तीनों मूर्तियां नीचे रखी गई, लेकिन मुरली में क्लैरिफिकेशन दे दिया ईश्वर की वाणी में, जिसे कहा जाता है ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, वो ब्रह्म वाक्य है त्रिमूर्ति शिव, शिव की तीन मूर्तियां। इनमें कौन सी मूर्ति है जो सृष्टि के आदि में भी दिखाई जाती है, मत में भी की पूजा होती है, अंत में भी है, शक्ति रूपी रंगमंच पर वो मूर्ति कभी गायब नहीं होती, उनका आदि और मध्य कोई दिखा मंत्र कोई बता ही नहीं सकता, न आदि है न अंत है, वो तो अविनाशी है, बीज अविनाशी होता है। तो सृष्टि का मनुष्य शक्ति का जो बीज है वो एक ही बीज है जिससे अशक्त वृक्ष पैदा होता है, बड़गद का वृक्ष, बड़े से बड़ा वृक्ष जिसमें अनेक धर्मों की शाखाएं फूटती, जो मुख्य जड़ है वो लोप हो जाती है, मुख्य तना भी लोप हो जाता है। मुख्य जड़ है ब्राह्मण धर्म, मुख्य तना ही है देवता धर्म, उनका वर्चस्व खत्म हो जाता है, देवता धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रह जाता है। जो कन्वर्ट होते हैं और धर्म की ही डालियां रह जाती हैं। बरगद के पेड़ ने देखा होगा बीज का जो थुर है, बीज की जो जड़ है वो दिखाई नहीं देती, आसपास की जो डालियां हैं वो जड़े पकड़ जाती। तो और धर्मों ने दुनिया में अपना वर्चस्व जमा लिया, देवी देवता सनातन धर्म लोप हो गया, पूरा लोप भी नहीं होता है। अभी भी इस भारत में ऐसे ऐसे परिवार हैं, 60-70 का परिवार एक ही चूल्हे पर खाना खाता है। एक के कंट्रोल में चलता है। ऐसे नहीं कि बाप कांग्रेसी हो, कांग्रेस को वोट दे और बच्चा जनता पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को वोट दे, नहीं, सारे एक रास्ते पर चलने वाले। ऐसा एक तत्ववाद जो बाप ने आकर के सारी वसुधा पर एक ही कुटुंब की स्थापना की थी, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी दुनिया बनाई थी। तो तीन मूर्तियां जो दिखाई जाती हैं, शिवलिंग के नीचे वो शिवलिंग है, तीन मूर्तियों में से बड़ी से बड़ी जो मूर्ति है शंकर की, उसका संपन्न रूप, और नीचे तीन मूर्तियां दिखाई गई हैं पुरुषार्थ के रूप। ये चित्र गलत नहीं है? और अरे निराकार तो निर्गुण है, किसने कह दिया उसमें गुण है?
साकार होता है,
साकार हो गया, फिर निराकार कहाँ रहा? वो तो साकार में निराकार हो गया, जैसे आत्मा निराकार है और साकार में प्रवेश करती है गर्भ में, तो साकार हो गई या निराकार है? साकार हो गई। और धीरे धीरे, ब्रह्मा तो विष्णु बनता है
और शंकर शिव प्रभाव बनता है, शंकर शिव प्रभाव बनता है, बाप प्रभाव शंकर जो है शिव प्रभाव बनता
है,
कुछ ब्रह्मा तो विष्णु प्रेम मूर्ति और शंकर तो शिव जो है प्रेम मूर्ति होगा, दोनों मूर्ति में क्या होगा? ब्रह्मा तो विष्णु एक मूर्ति,
ब्रह्मा सो विष्णु वो तो एक ही हो गया।
हाँ, और शंकर जो है शिव समान बनते हैं, बाप समान बनते
हैं,
वो एक मूर्ति हो गई,
एक मूर्ति है, नहीं वो मूर्ति नहीं रहती,
एक रूप हो गया।
एक रूप होने का मतलब है वो मूर्ति नहीं रही, वो अमूर्त हो गया। और अमूर्त किस तरह हो गया? जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है वो विष्णु को चार हाथ दिखाए जाते हैं, वो चार भुजाएं जड़ हैं, यह चैतन्य आत्माओं की यादगार है, चैतन्य आत्माओं की यादगार है। जैसे ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा नाम के अनेक हैं, अनेक हैं, इसलिए विष्णु की भुजाएं भी अनेक हैं। उन भुजाओं में, चारों भुजाओं में सब एक जैसी नहीं है, कोई राइटियस है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई ऊपर की भुजाएं है, कोई नीचे की भुजाएं, चार आत्माओं की यादगार है। जो राइटियस भुजाएं हैं वो ब्रह्मा और सरस्वती की यादगार है, जिन्होंने अपने जीवन में राइटियस काम ही किया है, लेफ्टिस्ट का पार्ट नहीं बजाया। ब्रह्मा ने अपने जीवन में सहन करने का पार्ट बजाया। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, सरस्वती की बड़ी माँ, जो बड़ी माँ है सृष्टि की बड़ी माँ, उसको फॉलो करने वाली जितनी भी सृष्टि में माताएं होती हैं वो आज भी सहन शक्ति का पाठ बजाए रही। उनसे जाती सहन शक्ति का पाठ न बच्चे बजाते हैं, न बच्चियां बजा सकती हैं, न बाप बजा सकता है। तो ब्रह्मा राइटियस भुजाओं के रूप में और सरस्वती भी राइटियस भुजा के रूप में। सरस्वती को ऊंचा हाथ क्यों दे दिया और ब्रह्मा को ऊंचा हाथ क्यों दे दिया गजे गधा वाला? गदा में ज्यादा तीखी धार होती है या तलवार में ज्यादा तीखी धार होती है? तलवार में तीखी धार होती है, गदे की धार तीखी नहीं है, मोती मार मारता है, हर बात में ड्रामा, कुछ भी हो जाए ड्रामा। ये ड्रामा का गदा है। सरस्वती तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, ब्रह्मा को फॉलो किया, लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन मंथन ब्रह्मा का चलता था या सरस्वती का चलता था? एक ज्ञान का पॉइंट पकड़ करके घंटों वाणी चला गई, एक पॉइंट का इतना विस्तार कर देते। मनन चिंतन मंथन करने में सरस्वती थक गई, इसलिए राइटियस भुजाओं में ऊपर की भुजा दिखाई गई। क्यों थक गई? क्योंकि सरस्वती ने एक ज्ञान का पॉइंट ऐसा निकाला जिसका बेस कीमती सानी कोई दूसरा पॉइंट हो ही नहीं सकता। क्या पॉइंट निकाला? आत्मा है, ज्योति बिंदु है, अनुरूप है, अति सूक्ष्म है, तो आत्माओं का बाप भी जरूर सूक्ष्म होगा, ज्योति बिंदु होगा। पहले लाल लाइट के गोले को याद करते थे, लाल लाइट का गोला याद करना बंद कर दिया। क्या किया? लाल लाइट के गोले में बिंदु लगाया। तो ज्योति बिंदु को लाल लाइट के गोले में याद किया, साकार में निराकार। ये ज्ञान सरस्वती माता ने निकाला, ब्रह्मा ने नहीं निकाला। इसलिए सरस्वती की भुजा ऊपर दिखाई गई और विष्णु की लेफ्टिस्ट भुजाओं में लेफ्टिस्ट क्यों दिखाया गया? ऊपर की भुजा है शंख, शंख दिखाया, ज्ञान का शंख सारी दुनिया में फूंक दिया। युद्ध होता है तो क्या करते हैं? शंखनाद होता है, ज्ञान का शंख फूका गया। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। दुनिया की जो सबसे जास्ती पवित्र आत्मा है वो है लक्ष्मी, स्त्री चोले के रूप में। लक्ष्मी के ही बचपन का नाम राधा था, राधा चंद्रवंश से आती है और कृष्ण सूर्यवंश से होता है। इसलिए चंद्रवंश की जो राधा है वो शीतल स्वभाव वाली है, अपनी भारतीय परंपरा में पुरुष की जो शादी होती है, पुरानी परंपराएं ऐसी थी, आज तो विदेशियों के प्रभाव में सब परंपराएं टूट गई कि पुरुष ऊंच कुल का देखा जाता था और स्त्री नीचे कुल से देखी जाती थी। तो कृष्ण सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी दोनों का मेल होता है तो बड़े होकर के नारायण नारायणी बनते हैं। तब गायन होता है कृष्ण नारायण वासुदेव। तो ये जो प्रवृत्ति मार्ग बना स्त्री और पुरुष का, वो प्रवृत्ति मार्ग ही इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है। अगर स्त्री एक रास्ते पर चलेगी और पुरुष दूसरे रास्ते पर चलेगा, स्त्री ज्ञान में चले पुरुष न चले, या पुरुष चले स्त्री न चले, तो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो सकता और वो भी कंट्रोल तब हो सकता है जब दोनों का आपस में सामंजस्य हो, स्वीकृति हो। जो भ्रष्ट इंद्रियां है वो माया भी युद्ध करती है, देवताएं तो भ्रष्ट इंद्रियों से आपन ही नहीं करते। इसलिए लक्ष्मी की भुजा लेफ्टिस्ट में दिखाई गई है। तो यही स्वरूप है जिसके द्वारा बाप को प्रत्यक्ष किया जाता है। शुरुआत संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। शिव के मंदिर में यादगार है और वो शिव के मंदिर संसार में सबसे जास्ती तादाद में बने हुए, सबसे जास्ती पुराने मंदिर भी शिव के हैं। उससे साबित होता है कि लक्ष्मी को लेफ्टिस्ट के रूप में दिखाया, परंतु ऊंची भुजा है, इंद्रियों पर जीत पाने वाली है और नीची भुजा के रूप में जगदम्बा को दिखाया। जो जगदम्बा है वो कीचड़ में रह करके, कीचड़ की दुनिया में, कीचड़ इंद्रियों में रह करके मनसा से पवित्र है। इसलिए जगदम्बा का जो आखिरी रूप महाकाली दिखाते हैं, वो महाकाली के मस्तक पर शंकर का चित्र दिखाते हैं। इंद्रियों से शरीर से काला कर्म करने वाली है लेकिन मन से पवित्र है या पवित्र है? मन उपराम स्टेज में है या डूबा हुआ है? उपराम स्टेज में, कीचड़ में डूबा हुआ नहीं है। इसलिए वो भी विष्णु के रूप में चौथी भुजा के रूप में दिखाई दे। ये चार भुजाएं हैं विष्णु की। भुजाएं जड़त्वमय बुद्धि वाली होती है या भुजाएं चैतन्य होती है? चैतन्य होती है। ये भुजाएं अपने आप चलती हैं कि कोई इनको ऑर्डर देता है तब चलती है? कोई चलाने वाला है तो वो चलाने वाला जो है वो राम वाली आत्मा मस्तक में दिखाई जाती है तीसरे नेत्र के रूप में। उसको कहते हैं शिवलेत्र। दिखाया जाता है शंकर को, वो भी ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु बनता है। बाकी कोई चार भुजाओं वाला कोई विष्णु होता नहीं है। अगर हुआ होता सृष्टि में तो उसकी वंशावली में भी चार भुजाओं वाले कोई देखने में आते। विष्णु से समझने के लिए ये प्रवृत्ति मार्ग का रूप है, जिनके स्वभाव संस्कार एक हो जाते हैं। भगवान आकर के ऐसी शक्ति रखते हैं जहाँ स्त्री पुरुष के स्वभाव संस्कार एक हो जाते हैं। और द्वापर युग से द्वैतवादी रावण जब आता है ना, तो ऐसी शक्ति बनाए देता है जहाँ घर घर में स्त्री पुरुष क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग टूट जाता है।
और दूसरी बात यह है कि आज सावधा और गरीब की बात आई है, सावधा और गरीब की बात
आई
है। सावधा से आगे रखा है गरीब बना रही
है,
सावधा जो होती है वो ज्ञान से ही धन कमाते
हैं,
जो धन कमाया जाता है वो ज्ञान से ही कमाया जाता है। तो अज्ञान के हेतु से कार्य
टैली करना होता है कि नहीं, धन कमाते हैं तुम उच्च कोटि का धन कमाते हैं या नीची कोटि का धन कमाते हैं? ऊंची कोटि की पढ़ाई पढ़ते हैं या नीची कोटि की पढ़ाई पढ़ते हैं? गहरा ज्ञान उठाते हैं या उथला उथला उठाते हैं? उसको फॉलो करना, अम्मा के रूप में फॉलो करने के लिए बोला या बाप के रूप में फॉलो करने के लिए बोला?
अम्मा के रूप में।
अम्मा को कंट्रोल कौन करता है?
बाप को फॉलो करने के लिए।
अम्मा को फॉलो करना है, बाप को भी फॉलो करना है, लेकिन अम्मा और बाप के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो किसको फॉलो करेंगे? बाप को फॉलो करेंगे, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है, माँ से वर्षा नहीं मिलता है।
गरीबों को
उठाते हैं, हाँ गरीबों को भी सुखी बात चाहिए देखे,
गरीब बाबा को अज्ञान के कारण ही गरीब बनते
हैं। हाँ 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 हाँ, अंतिम जन्म में जाकर के संगम युग जब होता है तो संगम युग के आदि में जिन सूर्यवंशी बच्चों को पहले पहले मिलते हैं वो उसी स्टेज में होते हैं। और शूटिंग आगे बढ़ती है तो शूटिंग भी चार अवस्थाओं से पसार होगी या नहीं होगी? होगी। तो जो आज में बहुत ऊंचे थे, बाप के दिल में समाये हुए थे, वो चौथी अवस्था की शूटिंग में आकर के एकदम मलबेले बन जाते, संग के रंग में आ जाते हैं, इसीलिए नीचे गिर जाते। बाप आते हैं तो हर आत्मा के आदि के रूप को देखते हैं या लास्ट के तमोपदान रूप को देखते हैं? आदि का रूप देखते हैं, इसलिए उनको प्रसाद कराते हैं। तो अंत में उन्होंने अलबेले होकर के ज्ञान की बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो गरीब बन जाते हैं अंत में। बाकी बाप के प्यारे नहीं है यार, बाप तो जानता है ही मेरे वो ही बच्चे जिन्होंने मेरे को सबसे जाति अंश तक सहयोग दिया था।
हमारे यहाँ भेद की बात आ रहा है ना,
जो हद में है वो ही बेहद में होता है। और
नौ लाख
की तारे
तो वो 9 लाख की तारे जो है और पांचवा है जो नारायण मतलब ब्रह्मा का बाबा के पास नारायण मंदिर है और सात नारायण तो सात नारायण से भी सात नारायण वाली आत्माओं से भी मामा पिता ने मुझे
नहीं वो तो बाद में परम धाम से उतरेंगे या पहले उतरेंगे बाद में उतरेंगे तो 9 लाख सितारों में इनकी गिनती कहाँ हुई कत्यू के आज में कत्यू के आज में 9 लाख आबादी बताई
9 लाख सितारे ऊंचे हैं
हाँ
और द्वापर के बाद में जो गिनती बनती है उसमें जो चमक है जो भी कलेक्टर कमाते हैं तो नारायण वाली आत्मा है द्वापर युग से ज्यादा नाम कमाते हैं या 9 लाख सितारे ज्यादा नाम कमाते हैं द्वापर युग के बाद
9 लाख सितारों में ही जो 4.5 लाख दिन में चमकने वाले सूर्य सितारे हैं वो नाम कमाते हैं
उन बात वाले चार नारायण मंदिर नहीं जाता
हाँ जी उनको कोई हरा नहीं सकता जो भारत में विदेशियों ने आक्रमण किए उन आक्रमणों में भी उन विदेशियों ने मात खाई है उनसे जीत नहीं सके जीते भी
और जिनको मात खाई है जिन्होंने आक्रमण किए
हैं वो कन्वर्टेड है
कन्वर्टेड है जिन्होंने अपने प्रजा का राजा लोगों का पालन न करते हुए उल्टा प्रजा को प्रजा का दूषण किया है ऐसे
हाँ?
राजाओं को राजा ही का वर्षा कब मिलता है
बाप जो है वो राजा ही देता है जो रूहानी बाप है वो रूहानी बच्चों को राजा ही देता है या जिस्मानी बच्चों को राजा ही देता है 9 लाख में जो अव्वल नंबर बच्चे हैं सूर्यवंशी वो रूहानी स्टेज को पहले प्राप्त करते हैं जीते जी बाकी पढ़ाई पूरी नहीं करते पढ़ाई पूरी न करने के कारण वो देह अभिमानी के देह अभिमानी ही रह जाते उन देह अभिमानियों को निराकार बाप से अव्वल नंबर का सूर्यवंशी वर्षा नहीं देता और बाप थर्ड क्लास वर्षा देता नहीं फोर्थ क्लास रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ही वर्षा देता है फिर सवाल पैदा होता है जिस्मानी बच्चों को कौन देता है जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी बाप है वो वर्षा देता है द्वापर युग से ये जो जिस्मानी है जिन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी अधूरे नारायणों के राज्य में आए और वो अधूरे नारायण पूरी पढ़ाई पढ़ना पढ़ने के कारण और धर्मों में कन्वर्ट हो गए उनके फॉलोअर्स भी कन्वर्ट हो गए वो कन्वर्टेड होने वाली आत्माएं जो देवानी आत्माएं वो देवान वाले बाप से वर्षा प्राप्त करती है
शूटिंग अभी यहाँ रहती होती
है उसकी शूटिंग जो है वो देवान का बाप जो है जिसे प्रजापिता कहा जाता है वो प्रजापिता संगम युग में ही आगे आने वाले समय में उन बच्चों को राजा देगा जैसे बाबर ने मुगल वंश शुरू किया उनकी पहचान ये है कि बाबर जो था वो मुगल वंश का पहला एम्परर था और वो बना कैसे पहले एक साधारण सिपाही था जिस जीवन में साधारण सिपाही था उस सिपाही से बढ़कर के वो भारत का सम्राट बनकर के बैठ गया ये खासियत है उस आत्मा की एक ही जन्म में नीचे से होकर के ऊपर उतर के ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर लेना और जिसमें ऐसा पुरुषार्थ का मादा है वो देवहान के कारण ही है اس لیے مرلی میں بولا ہے نرک کی دنیا میری ہے تو سورگ لو، سورگ کی دنیا میری ہے تو نرک کی دنیا میری نہیں ہے کیا؟ وہ دیوتاؤں کا بھی باپ ہے اور اسروں کا بھی باپ ہے، آسری دنیا کا بھی باپ ہے. بچے تمہارا باپ آیا ہوا ہے تو کیا دیوتاؤں کا ہی باپ آیا ہوا ہے؟ کہ 500-700 کروڑ سبھی بچوں کا باپ آیا ہوا ہے، سبھی کا باپ آیا ہوا ہے، اسروں کا بھی باپ ہے، دیوتاؤں کا بھی باپ، آسری راجائی اس اسر بننے والے باپ سے پراپت ہوتی ہے. جو اسر ہیں ہنسک بن کر کے بھارت میں آکرمن کرتے ہیں تو ہنسک یدھ کرتے ہیں نا، کیسا یدھ کرتے ہیں؟ ہنسک یدھ. یہ ہنسک یدھ آسری یدھ ہے یا دیوتاؤں کا یدھ ہے؟ آسری یدھ ہے. اس آسری یدھ میں بھی ان کو مات دینے والا، ہرانے والا کون ہوتا ہے بھارت میں؟ وہی باپ جو آسروں کا بھی یدھ ہے. باپ آسریت میں بھی باپ بن جاتا ہے، دیوت میں بھی باپ بن جاتا ہے، پتت پنیر میں بھی سب کا باپ اور پاون بننے میں بھی سب کا باپ. پاون بنتا ہے تو جو بھی دیواتمائیں ہیں ان کو برتا اس باپ پرجاپتا پرجاپتا یا پرجاپتی سے ہی ملتا ہے. باپ ماتا کو نمت بناتا ہے، جگدمبا کو، جگدمبا سے پھر سارے وشو کی ماتماؤں کو راتی ملتا ہے. تو پتت پنے میں بھی باپ اور پاول میں بھی باپ، دونوں کا نمت ایک ہی باپ ہے. اس لیے دو بھید کے باپ گائے ہوئے، ایک آتماؤں کا باپ اور ایک منشی شکتی کا باپ. ہاں جی
بات ہے تو
ہے تروپتی کا مندر دیکھا ہے وہاں کیا ہوتی ہے؟ حجامت ہوتی ہے، وہاں بالا جی کی پوجا ہوتی ہے. بالا جی بال گوپال کو کہا جاتا ہے، کرشن کو کہا جاتا ہے. وہ کرشن کا مندر جو ہے تروپتی میں، بالاجی کا مندر، وہ سنگم بھی کرشن کی یادگار ہے یا سچ بھی کرشن کی یادگار ہے؟ سنگم بھی کرشن کی یادگار ہے. اس لیے آج بھی وہاں جو بھی جاتے ہیں ان کا ماں کا موڑ لیا جاتا ہے. اس لیے شنکر حجام بھی ہے، وہ حجاموں کا باپ نہیں ہے. ارے اس سستی میں حجام ہے تو ان کا کوئی مول باپ بھی ہو. اور بابا
بابا
بس بس ہاں
بابا بابا
نہیں ایسے کہا کہ 1947 میں جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا भारतवासियों का और मुसलमानों का बंटवारा हुआ। भारतवासी अहिंसक थे और मुसलमान शुरुआत से ही हिंसक। मोहम्मद की पैदाइश, कत्लेआम कराया अच्छी तरह से मूर्ति पूजा करने वाले इस्लामियों का, तो वो मूल प्रश्न क्या है आपका? एक ही ट्रेन चलेगी। तो सन 47 में जब 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान के हर शहर से जो एक ट्रेन निकली वो सेफ चली गई, कोई मारकाट नहीं हो पाई। उसके बाद जो दूसरी ट्रेनें चली हर शहर से वो सब काट डाली गई। जो आज में हुआ वो ही अंत में होता है, अंत में भी ऐसा ही होगा। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं तो दो दुनिया हो गई। नारकीय राक्षसों की दुनिया, हिंसकों की दुनिया और एक देवताओं की दुनिया। जब दो दुनिया बनेंगी शुरुआत होगी, शुरुआत छोटे रूप में होगी या एकदम 3300 के रूप में होगी? छोटे रूप में, छोटा सा परिवार तैयार होगा। जितनी छोटी सी राजधानी स्थापन होगी तो राजधानी स्थापन होने के साथ ही साथ विनाश की भी शुरुआत हो जाएगी। और जब विनाश शुरू होगा उस समय की ये बात है एक ही ट्रेन चलेगी 47 के मौके हर शहर से। ऐसा माहौल बन जाएगा कि दूसरी जो ट्रेन चलेगी हर शहर से वो काटी जाएंगी, खून का युद्ध होगा, महावारी महाभारत ग्रहेगी, खून की नदियां बहेंगी। गलती क्या है
बाबा? अंत समय में माउंट आबू में जो जमा होंगे तो वो संकल्पों के लिए मतलब मन बुद्धि से जमा होंगे ना बाबा, तो स्कूल में जाने की चर्चा नहीं है। तो अभी तो माउंट आबू में पावर नहीं लेना और वो जो बात है किस आधार
पर
माउंट आबू में प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी करना, मतलब उधर जाके स्थानीय होना।
कारण ये है कि दुनिया के जितने भूगर्भ शास्त्री हैं इंटरनेट से उनसे कनेक्शन करके पूछो कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा पहाड़ है जहां भूकंप का कोई असर नहीं होगा। छोटे मोटे भूकंप बड़े भूकंप सब झेल जाएगा, आखिरी में तो सारी दुनिया ध्वंस में जाएगी। जब लास्ट में जैसे दीपावली पर बच्चे 12-1 बजे सारे पटाखे फोड़ देते हैं करके, ऐसे लास्ट में तो सारा एटमिक धमाका हो ही जाएगा, उसमें माउंट आबू भी नहीं रहे। लेकिन तब तक के लिए इस दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां की प्रॉपर्टी ज्यादा से होगी? कौन सी जगह? माउंट आबू।
और
सृष्टि को चलाने वाला
है
एक शिव बाबा
है,
सृष्टि सृष्टि दुनिया को चलाने वाला एक बाबा
था, एक शिव बाबा।
हाँ बोलो बोलो।
इसका तजुर्बा कितने लोग कितने परफेक्ट लोगों को है, इसका जो तजुर्बा है
कितना लोगों को है,
इसका जो ज्ञान है वो कितने परफेक्ट इंसानों का है, सब लोग को नहीं जानते होते ना।
शिव के सबसे नजदीक कौन है? अरे शिव के सबसे नजदीक कोई है या नहीं है? है कौन? वो सब जानता होगा। कब जानता होगा? जब उसका पुरुषार्थ संपन्न हो जाएगा याद का। शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाया है, इससे क्या साबित होता है? पुरुषार्थ ही है या संपन्न है? पुरुषार्थी। जब याद का पुरुषार्थ संपन्न हो जाएगा तो बाप समान वो भी त्रिकालदर्शी हो जाएगा। जैसे बाप त्रिकालदर्शी शिव, ऐसे ही बाप समान शक्ति का जो बड़ा बच्चा है जिसे बाप समान कहा जाता है वो भी उसकी समान हो जाता है। इसलिए एक शंकर ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। ओम शांति।